बाबा ने तो बोला है तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। क्यों? इसलिए चलेगा कि जो परिवार के आपके भांति हैं, जानते हैं कि कोई और ज्ञान ले लिया इसने है, फिर भी आपको घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया,
नहीं
इतनी घृणा तो नहीं करते हैं कि आपको घर से बाहर निकाल दें। कौरव तो नहीं है, है? कौरव तो नहीं बने ना, आपको प्यार तो करते हैं ना। आप जो घर में सुनाते हैं तो कान बंद तो नहीं कर लेते, मुसलमान तो नहीं बन जाते, अल्लाह अकबर सुनते हैं ना, भले स्वीकार नहीं करते, अभी स्वीकार नहीं करते है। हाँ, तो वो आत्माएं जो अभी हमारी बात सुन तो रही है कम से कम, भले स्वीकार नहीं कर रही है, और उनके मुकाबले जो बेसिक वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी है वो क्या कर रहे हैं? वो सुनते भी नहीं और आपको देखना भी नहीं चाहते, और अपने घर में अपने परिवार में रख भी नहीं सकते, आपको निकाल के बाहर कर देते हैं। तो वो ज्ञान में आएंगे या आपके परिवार के जो लौकिक परिवार में हैं, सुनते भी हैं, आपको निकाल के बाहर भी नहीं किया है, आपसे प्यार भी करते हैं, आपकी अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो दौड़े दौड़े आपको उठा करके भी लाएंगे, और वो उठा के नहीं मर गया तो अच्छा हुआ। तो उनको ज्ञान में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। इसलिए बोला कि तुम्हारे परिवार के जो भी हैं भांति, वो अंत में ज्ञान में आवेंगे, लेकिन प्रजा वर्ग में जावेंगे। क्या
टूलेट के पहले आएंगे के बाद में?
अरे यहाँ राजाई पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, और जब रिजल्ट निकल गया, रिजल्ट निकलने के बाद कोई ज्ञान में आते हैं तो क्या कहेंगे? तो टूलेट का बोर्ड हुआ ना, अभी भी लेट का बोर्ड लगा है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है।
बाबा आदि में जो ब्रह्मा था उसकी लाश,
आपसे पहले कोई पीछे एक भाई पूछ रहा था।
बाबा कुछ साल पहले मेरे जिंदगी में तनाव था, इसलिए अनिश्चय हो गया बाप के ऊपर से, तो एक बार मंदिर में गया और शंकर भोलेनाथ की मूर्ति से कहा कि अगर आप सचमुच भगवान हो तो मेरी जिंदगी को बदल के दिखा दो, मैं आपसे वादा करता हूँ सारे संसार को परिवर्तन करके दिखा दूंगा। फिर रात को मैं सो गया तो सपने में मुझे शंकर भोलेनाथ की मूर्ति दिखाई दी। दूसरे दिन जब मंदिर में गया गुस्सा करना था लेकिन अपने आप शांत हो गया, तो ऐसा क्यों हुआ?
अभी बैठे हो ना? अभी बैठे हो कि नहीं? कौन से मजमे में बैठे हो? हाँ, जो ऊपर की तबके का मजमा है उसमें बैठे हैं ना, इसीलिए हुआ। अगर ऐसा न होता तो शायद इस संगठन में न बैठे होते।
हाँ, बाबा आदि में जो ब्रह्मा था उसकी लाश भी गुम कर दी गई, मतलब
उसकी लाश है कहीं, उसका आता पता मिल रहा है? तो फिर माने यज्ञ के आदि में ऐसा कुछ हुआ, इतना ज्यादा विरोधाभास हुआ कि उसका अता पता कुछ भी नहीं मिल रहा है, कौन है, कहाँ है, क्या है, कहाँ चला गया। बहुत खोज करेंगे तो परिवार में कुछ न कुछ तो निकलेगा। हाँ जी, और ये दीदी दादियां जो पहले सन 76 से पहले एडवांस ज्ञान निकलने से पहले पीयू की बहुत बातें सुनाती थी, क्या पीयू की हिस्ट्री सुनाती थी, वो जैसे ही एडवांस ज्ञान निकला पीयू की एक बात मुख से निकलना बंद हो गई, और बाबा ने इशारा दे दिया। ये धोबी घाट जो है ना, ये जो बेहद का धोबी आया हुआ है ना, ये धोबी घाट यज्ञ के आदि से चलता चला आया। तो इस धोबी घाट में जो पुराने पुराने बैठे हैं, इनके कपड़े धोए गए होंगे कि नहीं धोए होंगे? होंगे, धोए गए हैं, लेकिन उसका नाम लेने में शर्म आती है। इसी बात को लेकर के जिन्होंने नहीं समझा उन्होंने झगड़ा खड़ा कर दिया। क्या दो पार्टियां किस लिए हुई, झगड़ा किस लिए हुआ? न समझने के कारण। और जिन्होंने समझा वो चुपचाप रहे, शांत रहे। और
बाबा कहते हैं मधुबन वालों को मधुबन,
बाबा सूक्ष्म
माता पूछ रही है
मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा तो किस आधार से बाबा?
मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी।
ऐसे कौन सा वारंट?
आधा विनाश देखा?
नहीं।
ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में आधा विनाश हुआ सो सुना भी नहीं है? 76 में आधा विनाश हुआ। वो तो बेसिक की बात है।
98.
हाँ 98 में जो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कृष्ण का जन्म हुआ, महाभारी महाभारत युद्ध रचा, वो कौन से युग के अंत की बात है? द्वापर के अंत की बात है। तो द्वापर अंत की शूटिंग कहाँ होती है? जो शास्त्रों में ये सारा वर्णन कर दिया है कहाँ की यादगार है? द्वापर युगी शूटिंग का जब अंत होता है ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में एडवांस में, तो आधा विनाश होता है। क्या आधा विनाश हुआ? उस समय अखबारों में टीवी में चारों तरफ कुछ है, ग्लानी उड़ाई गई कि नहीं उड़ाई गई? और जब ग्लानी उड़ती है तो कच्ची कच्ची आत्माएं टूटती हैं या रह जाती हैं? एडवांस में भी बहुत ढेर सारे टूट गए कि नहीं टूट गए? सिर्फ बाहर वाले नहीं टूटे, अंदर वाले भी जो सरेंडर हैंड्स थे वो भी भाग खड़े हुए मारे डर के। तो आधा विनाश हुआ तब तो ऐसा हो गया, उसका असर कलकत्ते में भी हुआ। खादिम शू कंपनी का जब मामला निकला, खादिम शू कंपनी के जो किडनैपिंग का केस हुआ उसमें सैकड़ों पकड़ लिए गए, उसमें कलकत्ते के जो मुख्य भाई जिन्होंने मिनी मधुबन दिया है रविंद्र भाई, वो उसको भी फरुखाबाद से पकड़ के ले गए। और वहां जाकर के वो ग्लानी की अखबारों में, ग्लानी सारे ही अखबारों में, टीवी में सारे ही चैनल्स में ग्लानी, रेडियो में ग्लानी, ऐसी हालत हो गई सेंटर की कि जो भी आने वाले थे वो सब आना बंद कर दिया और अपनी अपनी कन्याओं को ले जा करके ले जाने लगे। वो तो आधा विनाश की बात है। और जब टोटल विनाश होगा तब क्या होगा?
माना शंकर द्वारा साक्षात्कार शुरू,
साक्षात्कार शुरू हो जाएगा। एडवांस की आत्माओं को साक्षात्कार होते हैं क्या?
नहीं, लेकिन आदि स्वांत काम है।
अरे आधा विनाश में जब ऐसा नजारा हो सकता है तो जब टोटल विनाश होगा तो क्या नजारा होगा? हालतें खराब हो जाएंगी, गांव वाले समाज वाले सरकार वाले जीने नहीं देंगे। कलकत्ते में ये हालत थी, गांव वालों ने घर जला दिए, तुमने लड़की का सत्यानाश कर दिया लेके आओ नहीं तो हम घर जला देंगे, जला दिए। प्रशासन कुछ भी नहीं कर सका, वो तो आधा विनाश है। जब टोटल होगा तब क्या होगा? और पहले बीज रूप आत्माओं की दुनिया में विनाश होगा कि पहले जड़ों पर बैठे हुए आधार मूर्ति की दुनिया में विनाश होगा कि पहले बाहर की दुनिया का विनाश होगा?
रावणों की दुनिया
है, पहले तो हर काम अंदर से शुरू होता है। सफाई अंदर से शुरू होगी या बाहर से शुरू होगी? दीपावली पर दीपक जगाते हैं, लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, तो लक्ष्मी के आने से पहले जब कचरा साफ करते हैं, कीड़े मकोड़े भगाते हैं, तो अंदर से भगाते हैं या पहले बाहर से कचरा इकट्ठा करके अंदर लाते हैं?
अंदर से
यहाँ जो इतने इतने ढेर के ढेर बैठे हुए हैं, जिन्हें बहुत से तो ऐसे बैठे हुए हैं कि देखें कैसा होता भगवान। भगवान है कि शैतान है, देखें तो जाके। अभी अभी निश्चय बुद्धि और घर गए ग्लानी करना शुरू कर दी, अनिश्चय बुद्धि। तो ये सब स्वर्ग में चले जाएंगे क्या? इतने ढेर सारे जो एडवांस में निकल रहे हैं सारे ही स्वर्ग में चले जाएंगे कि छठे छटाए जाएंगे?
स्वर्ग में तो छठे छटाए जाएंगे।
फिर तो विनाश होना जरूरी है या नहीं है? गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशालाएं छोड़नी पड़ेंगी क्या? क्योंकि बहुत सी गीता पाठशाला वाले ऐसे हैं जो पूरे डायरेक्शन फॉलो ही नहीं करते। गीता पाठशाला खोल के बैठ गए, गीता पाठशाला का हिसाब किताब कुछ भी ऊपर नहीं पहुंच रहा है। बाबा का घर बन गया, गीता पाठशाला खुल गई। और
सूक्ष्म शरीर वाली आत्मा कोई में प्रवेश करती है और कार्य करती है, जब वो कार्य करती है तो उस कार्य का बेनिफिट किसको मिलता है?
है? तो शरीरधारी को मिलता है। शरीर के द्वारा पाप पुण्य बनता है या बिना शरीर के पाप पुण्य बनता है? तो जिसका शरीर होगा उसका पाप पुण्य बनेगा। उस शरीरधारी ने पूर्व जन्म में ऐसी दुष्ट आत्मा के साथ काय के लिए चिपकाव पैदा कर लिया, जानते भी हैं कि दुष्ट खून का है, लेकिन चेहरा मोरा देख लिया पसंद आ गया बस चिपकना शुरू, तो हिसाब किताब बनेगा नहीं, वो छोड़ देगा। वो तो अपना हिसाब किताब पूरा करेगा।
अच्छा बाबा, मुरली में बोला है हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, तो ये बात तुम्हारा किसके लिए लागू पड़ती है 47 की बात?
हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो जो दोनों माताएं थी वो वहाँ रह गई कराची में, या शरीर छोड़ के चली गई?
माताओं को ये बात लागू?
हाँ जी,
दोनों माताओं।
तुम्हारा कहने वाला बाप है और तुम्हारा बच्चों के लिए बोला है या किसी और के लिए बोला है? बच्चों के लिए बोला।
थूल शरीर का जन्म लिया या बेहद की बात है इसमें?
अरे बेहद का कैसा जन्म होता है?
बेहद का बाप तो बेहद की बात करेगा ना।
अच्छा, तो बेहद का जन्म कैसा होता है?
माना ज्ञान में आना।
ज्ञान में आना ये बेहद का जन्म हो गया? इसलिए बोला है राम ने काय की सेना ली? बंदर। हर बात में बेहद उठाना। तुम्हारा जन्म हुआ तो सूक्ष्म में, वो कैसा बेहद में जन्म हुआ। और
बाबा एक मुरली में बताया है वैष्णवी आएंगी तब धारणा होंगी बोले।
वैष्णवी आएगी तब धारणा नहीं होगी, वैष्णवी आएगी राधा आएगी तो कृष्ण की धारणा पक्की होगी। ऐसे नहीं कि राधा के आने से 16,000 की धारणा पक्की हो जाएगी। क्या पुरुषार्थ में भी आधा आधा होता है? अर्धांगिनी का मतलब क्या है? आधा आधा।
नंबर वार होंगे।
हाँ जी। और
बाबा खुदाई में शिवलिंग मिलता है?
हाँ जी।
लेकिन अजंता वेरूर में तो सब गौतम बुद्ध की मूर्ति है, वहाँ तो ऐसा शिव मंदिर देव देवता धर्म की ऐसी कोई मूर्ति नहीं
है।
देवता धर्म का कोई नाम निशान
नहीं। क्यों विष्णु की मूर्तियां नहीं निकली हैं?
बौद्ध धर्म की ज्यादा है बाबा।
तो सनातनी मूर्तियां भी निकली हैं, बौद्धियों की भी मूर्तियां निकली हैं। हाँ तो उस समय बौद्ध धर्म का प्रभाव ज्यादा होगा। जिस समय अजंता एलोरा की एलिफेंटा की गुफाएं बनी हैं, उस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया।
बेरुल में तो शिवालय करके एक स्पेशल लेनी बनाई
है।
बेरुल में महाराष्ट्र में शिवालय की स्पेशल लेनी बनाई घुष्णेश्वर
एलोरा में स्पेशल शिवालय की मंदिर।
हाँ जी हाँ जी
बहुत बड़ा शिवलिंग।
हाँ जी हाँ जी। और
जो मक्का मदीना है उसके नीचे जो शिवलिंग है,
नीचे शिवलिंग नहीं है, दीवाल में मोहम्मद ने लाकर के कहीं से कोई पत्थर रख दिया था, उसका नाम रख दिया संगे यशवद।
आवाज आती है रात को 12 बजे,
वो क्या है?
कोई हिंदू है
क्या है?
कोई हिंदू है, कोई हिंदू ऐसा आवाज आती
है रात को 12 बजे आवाज आता है।
और जो बंडा फोड़ करेगा सो हिंदू होगा ना।
वो आवाज निकलती बोले वहां मक्का मदीना।
उनकी मान्यता है कि गंगा जी का जल कोई हिंदू आकर के यहाँ चढ़ा देगा तो मुसलमानों का विनाश हो जाएगा।
पत्थर भी मारते हैं बाबा वहाँ पे है, पत्थर भी मारते हैं।
हाँ जी है।
हाँ जी हाँ जी।
गंगा के कंठे घर था।
क्या बोल रहे?
मैं कहते गंगा हरिद्वार लगे
गंगा था, गंगा का किनारे।
आप बोल दीजिए अपनी भाषा में मराठी में।
गंगा के किनारे माता थी ना, वो ऊपर गई पड़ गई बाबा जी ना, तो मग वो देव देवता बनती।
बाबा ने मुरली
मारी
बोला है अभी कि गंगा के किनारे एक माता थी वो गिर गई।
गंगा के किनारे एक माता थी मुरली में बोला है?
नहीं मैं हाँ। बताया नहीं
ना। लोग गिर गए बोले हाँ डेर के डेर वो जन्म लेगी क्या ऐसा बोल रहे। खाली माता रही वो माता ने सब जमा हो गया बोले।
कहीं मुरली में कुछ सुना ऐसा?
नहीं सुना।
गंगा होगी
ज्ञान
गंगा
शंकर
की जटा
से
गंगा।
अच्छा हाँ क्या बोल रहे थे
बाबा?
हाँ
जो 8वां नंबर नारायण सिंह का।
हाँ
उससे आमोली आत्मा जो राज एजेंसी है।
हाँ जी।
तो 8वां नंबर नारायण उसका बहुत दरी बनता है।
हाँ
गरीब बनता है
नारायण। हाँ
बहुत दरी बनता है, जो ज्ञान की पूरी बोल धारण नहीं करता।
हाँ
तो लक्ष्मी वाली आत्मा को ज्ञान की बोल धारण कर लेती है, बहुत दरी बन जाता है नारायण।
धारणा किसे कहा जाता है? धारणा सुनने को कहा जाता है, समझने को कहा जाता है, या धारण करने को उस ज्ञान कहा जाता है? है तो धारणा करने में कौन आगे गया? सीता वाली आत्मा धारणा करने में आगे जाती है ना, लेकिन समझाने क्या जो उजूरा है वो नारायण को मिल जाता है, तो आधा आधा हो जाता है। इसलिए त्रेता में जो नारायण बनेगा आखिरी उसके ऊपर लोन चढ़ेगा। क्या? राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, माने उस जन्म में राम वाली आत्मा राज घराने में नहीं होगी, कहाँ होगी? साहूकार प्रजा होगी, लेकिन इतना साहूकार होगा बड़ा कि सारी राजाई उनकी उसमें डूब जावेगी लोन देने में। लोन चुकतू करो, हमारे पास है ही नहीं, तो राजाई हमें दे दो
बाबा,
तो राजाई चली जाती है।
शास्त्रों में लिखा है दक्ष प्रजा पिता ने यज्ञ रचा और राक्षस लोग होने नहीं देते। राक्षस को नहीं थी
यज्ञ होने नहीं देते, जैसे राक्षस तो यज्ञ में राक्षस को संपूर्ण नहीं मिले।
दक्ष प्रजापिता ने जो यज्ञ रचा उसमें रुद्रगणों ने आकर के आग लगा दी। दक्ष यज्ञ जो है वो विध्वंस कर दिया।
अभी की बात कैसे जैसे अभी होगा
तो यज्ञ के आदि में दक्ष प्रजापिता था ना, ज्ञान यज्ञ तो रचा गया ना है? अब पार्वती को बुलाया जा रहा है, है? नहीं बुलाया जा रहा है, है? तो शंकर जी तो नाराज हो जाएंगे ना, तो अपने रुद्रगणों को भड़काए देंगे, जाओ यज्ञ विध्वंस कर दो।
खंडित राजा ही दिखाई है त्रेता के अंत में,
है
त्रेता के अंत में
सीढ़ी के चित्र में
त्रेता के अंत में तीन जो खंडिया दिखाई है वो वर्षा से मिलती है, वो छीन के लेते
हैं
जो राजा ही मिलती है उन तीनों को
पहले जन्म में। छीनना छपटना तो होता ही नहीं वहाँ, वो तो स्वेच्छा से दे देते हैं कि हमारे ऊपर लोन है उसके बदले में तो हमारी राजाई ले लो। वो राजाई की डायनेस्टी चलती रहती है। आखिरी जन्म में जो राजाएं बनते हैं उनको खंडित राजाई मिलती है भारत की। क्या पूरी अखंड भारत की राजाई नहीं मिलती है? क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जब एडवांस का फाउंडेशन पड़ा था तो भी उन्होंने खंडन मंडन कर दिया था। क्या हे भगवान के बने बनाए घर तू गिर जा, तो गिर जा घर बन गया। इसलिए उनको खंडित राजा ही मिलती है, नहीं तो आठ नारायण है सतयुग के। जो नारायण बनते हैं वो राम सीता बनते हैं, जो सतयुग में आठ नारायण बने वो इस त्रेता में जाके आठ राम सीता बन गए। बाकी बाकी कोई चाहिए कि नहीं? तो वो ही आत्माएं आती हैं जो एडवांस में ध्वंस करने के निमित्त बनती है।
बाबा ये जो बारह ज्योतिर्लिंग के बारे में जो गायन है बाबा, बारह आत्माओं के थ्रू ज्ञान बताता
है? बारह आत्माओं का ज्ञान नहीं बताता है उन, वो जो ज्योतिर्लिंग होते हैं उनको शिवलिंग ही कहा जाता है कि कोई और लिंग कहा जाता है? माना जो शिव के रूप में संसार में प्रख्यात होने वाली आत्मा है वो ही उन बारह ग्यारह को कंट्रोल करती है, उनमें प्रवेश करके उनकी बुद्धि को घुमा देती है। और
बाबा मंदिर घूंघट में कहा है?
मंदिर घूंघट में कहा है?
मम्मा घूंघट में कहाँ है? मम्मा घूंघट में है तो उसको ढूंढो, बाबा क्या जाने है?
बाबा ने बोला था ना
बाबा बच्चों के पीछे है कि अम्मा के पीछे है? भक्ति मार्ग में कहते हैं शंकर पार्वती पे फिदा हुआ, ये तो ग्लानी करते हैं है।
बाबा संगमी की लक्ष्मी नारायण का पार्ट सती त्रेता युग में कौन से रूप में हो गया? साहूकार के रूप में क्या राजा ही कराने में?
जो पहले जन्म में राजा महाराजा बनते हैं वो उस युग के अंतिम जन्म तक धीरे 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 राज परिवार से उतर करके प्रजाई की तरफ चले जाते हैं। धीरे धीरे उतरेंगे, ऐसे नहीं कि इस जन्म में राजा महाराजा हैं तो अगले जन्म में एकदम प्रजा वर्ग में चले जाएंगे, नहीं। पहले राज परिवार में जन्म लेते रहेंगे, आखिरी जन्म में प्रजा वर्ग में चले जाएंगे। हाँ
बाबा, कांग्रेस का अर्थ बोला है मुरली में ज्यादा कॉम कॉम करने वाले
है।
और दूसरी तरफ बोला है कि गांधी मरा तो किसी कांग्रेसी साहूकार के घर में जन्म लिया
जी।
तो यहाँ बेहद में तो ब्रह्मा की आत्मा शरीर छोड़ती है और बाप में प्रवेश कर लेती है।
हाँ जी,
वो तो कांग्रेस ही साहूकार बोलते हैं उसको।
हाँ तो कांग्रेस माने सरकार भी तो होता है,
लेकिन उसका तो निगेटिव अर्थ बोला है ना कांग्रेस का तो।
ओहो,
सरकार हो
जो कांग्रेसी है वो आधे नास्तिक हैं या नहीं है? उनमें आर्य समाजियों की संख्या ज्यादा है या नहीं है? है ना? तो बाप भी अंतिम जन्म में नास्तिक बन जाता है या आस्तिक रहता है? भारत इस समय पूरा नास्तिक है। आस्तिक उसको कहा जाता है जो कोई साकार के आधार पर चलता है, आस्था पर चलता है। जो भारत का पार्ट है जिसमें भगवान आते हैं, वो कोई साकार व्यक्ति के आधार पर चलता है? हैं? नहीं चलता।
ये जो पृथ्वी आप तेज वायु आकाश स्पेशल तत्व आत्मा ही होती के?
नहीं। अरे जैसे जड़ सितारे हैं, सूरज चांद सितारे हैं, नौ ग्रह हैं, ये जड़ है ना, वो जड़ सितारे हैं और उनके मानिंद धरती के चैतन्य सितारे हैं, आत्माएं। ऐसे ही यहाँ भी है।
बाबा कहा गया वैष्णवी आएगी तो फिर सब कुछ माना सतयुग आ जाएगा
सबके लिए।
नंबर वन,
नंबर वन
है,
नंबर
है
माना अभी आएगी तो फिर उसके बाद
जब कभी भी आएगी
वैष्णवी
तो किसके लिए आएगी? सन 76 में बाप आया, क्या सब ब्रह्मा कुमार कुमारों के लिए आ गया? है कोई मुट्ठी भर ने पहचाना उनके लिए आ गया। ऐसे ही जो राधा चंद्रवंशियों में मुखिया है उसको पहले चंद्रवंशी आत्माएं पहचानेंगी या दूसरे पहचानेंगे? वो पहले पहचानेंगे, वहां आ जाएगी, संगठन तैयार करेगी, मधुमक्खियों का छत्ता बनाएगी। है? है? उस मधुमक्खियों के छत्ते में कीड़े मकोड़े तो नहीं घुसे होंगे? है? बिच्छू टिंडन तो नहीं होंगे? है? नहीं होंगे ना। हाँ, ये रुद्रमाला के मणके क्या है? बिच्छू टिंडन है। इसलिए बोला विनाश और स्थापना साथ साथ होगी या अलग अलग होगी? साथ ही साथ स्थापना और साथ ही साथ विनाश। स्थापना के नजारे और विनाश के नगारे। एक तरफ शांतिधाम का गेट खुलेगा और दूसरी तरफ सुखधाम का गेट खुलेगा। तो जब विनाश होगा तो आधे पापात्मा और आधे पुण्यात्मा बचेंगे। ज्यादा पाप किसने किए हैं? राजाओं ने किए हैं, भारत के राजाओं ने या भारत की रानियों ने? एडवांस पार्टी में राजाएं हैं कि रानियां हैं? तो पापात्मा कौन हुए? एडवांस पार्टी में जो प्लानिंग पार्टी वाले हैं वो हुए पापात्मा, जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाले। इन राजाओं ने ज्यादा पाप किए हैं कि राजाओं की प्रजा ने ज्यादा पाप किए हैं, या रानियों ने ज्यादा पाप किए हैं? राजाओं ने ज्यादा पाप किए हैं।
बाप तो राजयोग सिखाने आए हैं बाबा।
बाप तो राजयोग सिखाने आए हैं लेकिन कर क्या रहे हैं?
लक्ष्मी रानी क्यों बनती है?
कौन
लक्ष्मी?
तो लक्ष्मी आके सीख रही है। आपको लक्ष्मी की ज्यादा फिक्र है तो लक्ष्मी को बुला के क्यों नहीं लाई? आप क्यों आके बैठ गई? कहते हम पहले राजा बनेंगे।
बाबा
जी,
इंद्र राजा है फिर भी उसको अपने दग्धि के सिंहासन के ऊपर प्रति मोह क्यों है? बोला था सवाल पूछा गया
है।
इंद्र राजा है फिर भी उसको अपने सिंहासन के प्रति मोह है?
इंद्र राजा है लेकिन किस समय की यादगार है? फिर जो डरता है वो संपूर्ण आत्मा है या पूर्ण आत्मा है? अपूर्ण आत्मा है। ब्रह्मा कुमारियां अगर डरती हैं, ब्रह्मा कुमार डरते हैं कि हमारे क्लास के सारे स्टूडेंट्स उड़ जाएंगे, इसलिए एडवांस पार्टी वालों को अंदर मत आने दो, सबको ज्ञान सुना देंगे, सारे उड़ जाएंगे। तो ये डर जो पैदा होता है, ये आत्मिक स्थिति वालों को पैदा होता है, जो पक्के आत्मा बन जाते हैं, या देवान वालों को होता है। और प्रजापिता जो दाढ़ी मूछ वाला, बकरे की दाढ़ी वाला दिखाया गया है शास्त्रों में, वो देह अभिमानी है या आत्माभिमानी है? देह अभिमानी है, तो बकरे की दाढ़ी दिखाई गई है। बकरा क्या करता है? मैं करता है।
इंद्र माना बेसिक में का,
अरे ब्राह्मणों की दुनिया में ही कोई इंद्र होगा ना, कोई दूसरा इंद्र थोड़ा ही होता है जो ज्ञान की बरसात बरसाता है। हैं?
ब्रह्मा को बोला है
क्या? कौन सा ब्रह्मा? अब्बल नंबर या द्वयम ते तीसरा चौथा नंबर? अब्बल नंबर नहीं, माने तुम्हारी बुद्धि में दादा लेखराज ब्रह्मा बैठा हुआ है, वो छप गया। अरे तो अब्बल नंबर क्यों नहीं बैठता?
सन के प्रति मुंह भी होता है।
अच्छा बाबा,
और जो तपस्या करता है बोले उसको भी वो
अच्छा बाबा को पूरा कर
लेना। मुरले में बोला है 4.5 लाख आत्माएं 1 फरलांग अंतर में दायरे में रहेंगी। फिर बाद में इसका क्लैरिफिकेशन भी दिया था कि आगे चल करके ऐसे कुछ बिल्डिंग वगैरह बनाई जाएगी जिसमें 4.5 लाख आत्माओं की रहने की, सोने के, खाने की सब व्यवस्था की जाएगी। तो ये बात सही है ना बाबा?
वो आत्मा की बात है या देहधारी की बात है?
शरीर में होंगे ना वो आत्माएं तो।
देखो, दिल में जगह होती है तो ढेर सारों के लिए थोड़ा स्थान भी काम कर जाता है, और दिल में जगह नहीं होती है तो महल हो फिर भी पूर्ति नहीं पड़ती है।
1 फरलांग का जो संगठन जमा होगा आत्माओं का, 4.5 लाख आत्माओं का, तो माउंट आबू में बनेगा या यमुना के कंठे दिल्ली में बनेगा?
माउंट आबू में और दिल्ली में फर्क क्या होगा?
एक तो तपस्या धाम होगा माउंट आबू,
जो शांति धाम होगा वो आत्मिक स्थिति वालों का स्थान है, और जो सुखधाम होगा उस सुखधाम में सारे 4.5 लाख इकट्ठे हो जाएंगे,
एक एक करके ट्रांसफर होता जाएगा उनका।
अच्छा, तो एक एक करके जब ट्रांसफर होंगे तो वो आत्मिक स्थिति वाले होंगे या देवान वाले होंगे? मधुमक्खियों की स्थिति वाले होंगे या देह अभिमानियों की स्थिति वाले होंगे? अब साकार में होंगे, अभी मिसाल बताया ना कि दिल में जगह होती है, दिल बड़ा होता है तो मकान छोटा भी बड़ा हो जाता है।
4.5 लाख का जो संगठन जमा होगा तो
4.5 लाख पहले शांति धाम में इकट्ठे हो जाएंगे या सुखधाम में इकट्ठे हो जाएंगे? हाँ, सुखधाम में तुरंत नहीं चले जाएंगे। सतयुग में भी जो 9 लाख आबादी होगी पहले जन्म में, वो इकट्ठे आ जावेंगे या धीरे धीरे 150 वर्ष में आते रहेंगे? धीरे धीरे आते रहे।
कृष्ण का पांव तेरा दिखाते
हैं। हाँ, कहाँ की यादगार?
संगम की है, पर नहीं कुछ
तो संगम युग में टेढ़ी चाल होगी जो कोई को समझ में नहीं आती। संगम युग की कृष्ण की चाल अड़बंगी होगी या सीधी सीधी चाल होगी? अड़भंगी चाल होती है। हाँ, मुरली बढ़िया है। पांव को जब मोर देखता है तो रोता है क्या, और पूंछ को देखता है तो खुश होता है।
कृष्ण के
पांव से चला जाता है ना, पांव से चाल दिखाई जाती है, तो चाल है अड़भंगी, इसलिए कृष्ण के टेढ़े पांव दिखाए। और
जो इंद्र है फिर वो ऋषि मुनियों की परीक्षा लेता है, बोल शास्त्रों में परीक्षा लेता है वो इंद्र।
अरे
तो तपस्या करता है ऋषि,
जो इंद्र है देवताओं का राजा है, तो देवता ऐसे ही सहज बंदा नहीं देगा, अरे कोई क्लास में भी जो कोई क्लास होता है, स्कूल होता है, क्लास में एडमिशन दिया जाता है तो परीक्षा करके दिया जाता है कि ऐसे ही ले लिया जाता है? तो परीक्षा नहीं लेना चाहिए,
परीक्षा भी ली जाती है और वो आपको नहीं के पूर्ण वो भी देखा जाता है।
हाँ जी, इंद्र का काम है परीक्षा लेना।
अंदर से डर रहता बोले ये बात कैसी फिर? अंदर से उसको डर रहता है हमारे सिंहासन नहीं
और क्या, जब संपूर्ण नहीं है पुरुषार्थी है तो डर रहेगा, और संपूर्ण पुरुषार्थी हो गया तो डर नहीं रहेगा। हाँ
बाबा, एक है इंद्र दूसरा है इंद्रजीत, दोनों का अंतर?
नहीं नहीं,
इंद्र माने राजा होता है, इंद्रजीत का मतलब है सारे राजाओं को जीत लिया, इसलिए इंद्रजीत कहा जाता है, और इंद्र इंद्रियों को भी कहा जाता है। इंद्र माने इंद्रियां, जो इंद्रियों को जीत लेता है वो भी इंद्रजीत कहा जाता है। हाँ चलो, ढाई हो गए, साढ़े दस से। क्या बताएं, चक्कर पड़ गए यज्ञ के आदमी वो माताएं भूल गई जिनके लिए बोला, ये मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर के बैठते थे।
तो वो दोनों माताएं तो हैं,
वो माताएं ही वास्तव में उन दोनों माताओं में से किसी एक का जगदम्बा का टाइटल था असली, और बाद में जब वो चली गई तो वो टाइटल ओम राधे को मिला, नहीं तो ओम राधे और ब्रह्मा बाबा दोनों उससे पढ़ाई पढ़ने वाले थे। हाँ जी, और
जैसे शादी ब्याह हो गई जिसकी पहले, अब उनका व्यवहार पड़ा है तो उनका लौटा है या न लौटा?
जो लिया है सो देना नहीं चाहिए।
जैसे बहन बेटियां आ रही तो उनको देना चाहिए? जैसे बहन बेटियां आ रही हैं,
कहाँ आ रही है,
घर में ज्ञान में चल रहे हैं, तो उनको देना चाहिए कपड़े लगते पैसे देने के? नहीं,
कौन बहन जी?
जैसे मान लो गीता पाठशाला में निमित्त है और उनकी बिटिया शादी की हुई है कोई भी, और वो दोबारा मिलने जुलने आती है, जब विदा होती है तो उनके हाथ में रुपया देना या तिलक करना, कपड़ा वपड़ा देना, मिठाई उठाई देना, लेना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए?
तोड़ निभाने के लिए मना कर दिया है क्या बाबा ने? लौकिक और लौकिक में तोड़ नहीं निभाना है, निभाना है तो बनाना है, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे, आएंगे नहीं। जब तक ज्ञान में नहीं चलते हैं तब तक लीपा पोती करते रहो।
दो हजार 2018 में
हाँ जी
किस का होगा?
इसका
किस का
प्रश्न का पूर्ण रूप दिन
एक मुरली में आया, पूर्ण रूप से जन्म होगा, फिर सतयुगी संगम 2018 में, सतयुगी तीर्थ का जन्म 2036 में।
हाँ जी,
तो 18 साल बीच में,
बीच में क्या रहेगा,
मतलब बीच में विनाश होगा कि क्या होगा?
संगमी की दुनिया का जो नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण है वो तो 2018 में प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि वो कृष्ण बच्चा है बेहद का, और वो है बेहद का बाप, बेहद का बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। वो कृष्ण बच्चा भी है और मनुष्य सृष्टि का बाप भी है, इसलिए बोला नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, और नेक्स्ट टू गॉड इज, तो चारों को नेक्स्ट टू गॉड बताया मैंने, चार अलग अलग नहीं है, एक ही पर्सनालिटी के लिए बोला गया जो नेक्स्ट टू गॉड है। वो 2018 में संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है तो जैसे नई दुनिया की शुरुआत हो जाती है, फाउंडेशन पड़ गया नई दुनिया का 21वें जन्म का, और वो 21वें जन्म का जो फाउंडेशन पड़ा है तो बेहद के ब्राह्मणों में जो बेहद के बच्चे हैं, पारलौकिक बाप के डायरेक्ट बच्चे, उनकी प्रत्यक्षता होना शुरू होती है। तो 2018 से लेकर के 2036 तक सब की प्रत्यक्षता होगी।
यूजन में बाबा दिखला रहा था 2029 में विनाश होने वाला, इंसान है कैसे?
वो तो दिखलाने वाले कौन है? उनकी बात ही छोड़ो, वो तो 63 जन्म कुछ न कुछ ऐसा उल्टा पट्टा करते चले आए।
अभी दिखा रहे थे कि 800 वर्ष का मनुष्य होंगे, अभी परसों दिखला रहे 800 वर्ष के होंगे, बताइए एक एक चीज ऐसा ऐसा दिखला रहे हैं।
अब दुनिया क्या क्या दिखला रही है, दुनिया की तरफ जाना है, दुनिया की तरफ बुद्धि ले जाना है, या जो बाप सिखला रहे हैं उसमें बुद्धि ले जाना है, तो काय के लिए इधर उधर बुद्धि भरमा रहे?
नहीं बाबा, जैसे ना साइंटिस्ट लोगों ने खोज किया है कि 5 साल में जो बम्बई है, कलकत्ता है, ये नहीं रहेगा,
तो
पानी में शराब।
कोई नई बात बता दी क्या? बाबा तो पहले से ही बताते चले आ रहे हैं ये समंदर के किनारे के जो भी शहर हैं वो सब समंदर में समा जाएंगे।
इसका माने बेहद में भी तो कुछ अर्थ होगा,
बेहद में ब्राह्मणों की दुनिया में जो बंबई वाले क्या वो पहले मरेंगे, जीते जी पहले कौन मरेंगे
बंबई
है।
जी कब तक
है,
कब तक
डेट नहीं बताई जाती, डेट तो ये बता रहे हैं।
नहीं बाबा जैसे उसमें इंडिया टीवी में दिखा रहा था पूरा एकदम।
अब टीवी में दिखाने वाले कौन है,
मैंने साइंटिस्ट लोग खोज भी तो कर रहे हैं।
साइंटिस्ट कौन है, भगवान है कि देवता है कि फरिश्ता है कि मनुष्य है?
मनुष्य।
तो वो तो गलतियां भी करते रहे हैं, 2500 साल से मनुष्य गलतियां करता चला आया। भगवान जो कुछ बोलेगा वो थोड़ी गलत होगा।
बाबा कैसन जी को पीपल के पत्ते में क्यों जमा? कैसन जी को पीपल के पत्ते में क्यों
है? क्योंकि पीपल का पत्ता जो होता है वो हिलने डुलने वाला बहुत होता है, थोड़ा सा हवा का झोंका आएगा और पीपल का पत्ता डोलेगा। बरगद का पत्ता इतना नहीं हिलता है लेकिन पीपल का पत्ता बहुत हिलता डुलता है। तो कोई चैतन्य आत्मा की बात है जो ज्ञान में चलने वाली है लेकिन बहुत हिलने डुलने वाली है। वो पीपल पात सरस मन डोला, पीपल के पत्ते की तरह उसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा डोलने लगती है, जिसके लिए मुरली में कहा है सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कृष्ण रूपी बच्चा विराजमान है। कृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्मा वो ज्ञान गर्भ में पल रही है, उसका आधार लेकर के पत्ते का, वो पत्ते को नवैया के रूप में दिखाया है। चित्र बनाते हैं ना, तो चित्र बनाते हैं सागर है, सागर में पीपल का पत्ता है, पीपल के पत्ते में गर्भ महल है, गर्भ महल में कृष्ण आराम से आदमी की स्मृति का अंगूठा चूसते हुए पड़ा हुआ है। कहां की बात है? ब्रह्मा कृष्ण की आत्मा, ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी होती है मृत्यु लोक में। कब पूरी हुई? 87-88 100 साल आयु पूरी होती है तो वो कृष्ण की आत्मा मृत्यु लोक छोड़ेगी तो कहां जन्म लेगी? अमर लोक। अमर लोक में सीधा जन्म लेगी या पहले गर्भ महल में आएगी? गर्भ महल में आती है। तो वो जो पीपल का पत्ते रूपी आत्मा है, जो रुद्रमाला का मणका है, उसका आधार लेती है। क्या? उसके आधार पर सारा कारोबार चलता है। अगर वो आधार न ले तो इतने ढेर के ढेर जो मिनी मधुबन खुल रहे हैं और ढेर की ढेर कन्याएं सरेंडर हो रही हैं वो भी नहीं निकलती। एक को देख करके सब आगे बढ़ते हैं, कोई एक आगे बढ़ता है या साथ साथ सभी इकट्ठे निकल पड़ते हैं? एक आगे बढ़ता है। तो वो एक पीपल का पत्ता सागर में पहले आया और उसका आधार लिया नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण ने। जैसे मुरली में बोला है कि जो और जानवरों के अवतार हैं वो पानी का आधार लेते हैं और जो रामकृष्ण अवतार हैं वो धरणी का आधार लेते हैं। धरणी माता माना रामकृष्ण ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने कन्याओं माताओं का आधार लेकर के कार्य किया। और जो दूसरे अवतार हैं कच्छ मच्छ अवतार, उन्होंने कन्याओं माताओं को आधार नहीं बनाया, किसको बनाया? ज्ञान जल को आधार बनाया। माने वो ज्ञान की रमक में ज्यादा रहते हैं, ज्ञान के अहंकार में ज्यादा रहते हैं, कन्याओं माताओं को महत्व नहीं देते। तो वो पीपल का पत्ता कोई कन्या है चैतन्य रूप में,
जो थोड़ा सा माया का झोंका आता है और जोल से हिलती डुलती, अभी भी हिलती डुलती है। और लोगों को ये प्रश्न पैदा होता है, क्या ये अगर सत्य की नैया है तो हिलेगी डुलेगी, लेकिन बाप कहते हैं कि वो डूबेगी।
बाबा है? जो ज्ञान में चली हुई आत्मा है और शादी कहे कर लेती है,
कहे कर लेती है,
शादी माने लेकर कहे कर अज्ञान में चले थे और शादी कह ली,
तो अज्ञान में है, अज्ञान में चलने वाला अज्ञानी नहीं बन सकता है क्या?
ज्ञान में चलते चलते भट्टी करने के बाद भी
शादी करनी तो कोई,
अरे ज्ञान में चलते चलते भट्टी करने के बाद, दूसरों को पढ़ाई पढ़ाने के बाद, गीता पाठशाला खोलने के बाद फिर भी शादी कर सकते हैं, ये क्या बड़ी बात हो गई?
कर लेते तो अगर बाद में पश्चाताप करते हैं और रियलाइज करते हैं कि अब हम ज्ञान में चलेंगे, हम जाना चाहते हैं, बाबा का बनना चाहते हैं, उनको अपना दुख हो रहा है, तो उनके लिए भी तो कोई तो नियम होगा ना, कोई तो रूल होगा,
है ना रूल, माफीनामा लिखाओ दोबारा चलो भट्टी करके,
तो माफीनामा लिख के दोबारा भट्टी करके भी गिरा रहो
क्या? नहीं रहे क्या? ढेर सारे माफीनामा लिख चुके हैं, ज्ञान में चल रहे हैं,
माफीनामा लिख के दोबारा भट्टी करके प्रायश्चित करके क्या दोबारा गीता पाठशाला खोल सकते हैं?
गीता पाठशाला कैसे खोलेंगे? मान लो कोई ज्ञान में चलने वाली सरेंडर होने वाली कन्या है, कन्या होने के बावजूद भी, सरेंडर होने के बावजूद भी फिर उसने शादी कर ली, कोई के ऊपर दिल आ गई, अब दोनों मिलकर के माफीनामा लिखते हैं, है? माफीनामा लिखते हैं, भट्टी करते हैं, फिर उनको ये परमिशन दे दिया है कि तुम गीता पाठशाला खोलो,
वो तो पूछ रहे हैं कि ऐसा होता है क्या?
अरे पहले जो गलती की है वो वापस तो करो, परनाला वही बहता रहेगा, कन्या को वापस करें? अरे कन्या हो या माता हो, कोई भी हो, जब तुम ज्ञान में चल पड़े हो तो अब कन्या रह गई तुम्हारी या तुम्हारी पत्नी रह गई, कौन है, कौन है?
वो तो बाबा की बन गई,
बाबा की बन गई ना, तो जो गलती की है वो गलती वापस करो, हाँ जी, जहाँ थे जिस ठिकाने पे उसी ठिकाने पे वापस आओ, वापस आने के बाद फिर कहो कि अब हम पोता में लिख रहे हैं, माफी मांगते हैं, अब हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे।
और बाहर की अज्ञानी दुनिया में से अगर शादी करते हैं, मान लो वो भट्टी किए हुए
हाँ,
तो फिर वो जो युगल बनती है फिर वो भी पोस्ट क्लास करती है, भट्टी करती है
हाँ,
तो वो उसका भी यही है
क्या?
तो वो अपनी युगल को वापस करेगा बाबा जी?
युगल को क्यों वापस, वो क्या सरेंडर हुई थी? वो यही में सरेंडर तो रही हुई थी,
बाहर की दुनिया में अगर उसका दिल लगा और शादी किया
हाँ,
तो फिर प्रायश्चित किया फिर भट्टी किया,
कोई कन्या है बाहर की दुनिया की है, यज्ञ में सरेंडर नहीं हुई है और उसने शादी कर ली, तो शादी करने के बाद वो दोबारा भट्टी करे पति को साथ ला करके,
साथ ला के फिर क्या गीता प्रसाद दोबारा खुल सकती है वहाँ?
हाँ खुल सकती है
उसके दोबारा,
हाँ बिल्कुल,
नियम से चल,
हाँ बिल्कुल।
और कई कुमारों का अभी जैसे चल रहा है कि जैसे कुमार लोग कहीं गीता प्रसाद चलाते थे पहले ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, और बाई चांस वहाँ
कुमारों को गीता पाठशाला खोलने का कोई हक नहीं,
नहीं अब उनके दिल में ये आएगा ना
हाँ,
कि भी अब बाबा तो हमको गीता में खोलने का हक नहीं है
हाँ,
और हम
तो पांडव भवन चलाने का तो हक है,
तो वो समझते कि चलो हम शादी कर लेते हैं,
अरे पांडव भवन चलाने का तो हक है,
तो पांडव में कन्या माता आ नहीं सकती,
अरे तो क्या लबड़ लबड़ कोई जरूरी है? अरे तुम्हें ज्ञान ही तो देना है, ज्ञान देना है, मुरली में भी बोला है पुरुष पुरुषों को समझाएं, स्त्रियां स्त्री को समझाएं, तो कन्या माताएं नहीं आएंगी तो नहीं चलेगा।
अब बाबा जैसे को पढ़े नहीं तो पढ़े नहीं, नहीं ना तो बाबे बाबे आपके लिए तो हमारे पाप नहीं कटेंगे?
कटेंगे
कैसे, हमें को अच्छा पढ़े नहीं, बाबा बाबा याद कर
तो करो ना याद, कौन मना कर
रहा है? पाप तो कटेंगे
है, पूरे गांव में उस शहर में कोई युगल भट्टी नहीं किया
है,
15-20 जो मान लो कि विधवा माता है लौकिक में वो भट्टी कर चुकी,
ठीक है उनमें जो होशियार विधवा माता हो अपने घर में गीता पाठशाला खोल ले,
वो गीता खोल सकते हैं वहाँ, सब वहाँ क्लास कर सकते,
विधवा माता हो, बुजुर्ग माता हो, होशियार माता हो, कड़क हो, खोल ले,
वो खोल सकते हैं, और बाई चांस वहाँ युगल निकल जाए,
युगल निकल तो युग तो युगल होशियार है तो उसको सौंपो,
ट्रांसफर करे वहाँ पे कि वो भी चलता रहे, वो भी चलता रहे,
अरे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी।
बाबा जिस एक घर में कई सोले आती हैं कन्या को और उसकी वजह से घर में कलेश होता रहा,
शांति होती है,
और फिर आपसे जब मिल चुके तो कलेश खत्म हो गया। फिर बाबा एक महीने हो गए, आत्मा से बाबा ने प्रेरणा दी या आपके भक्त ने प्रेरणा दी कि तुम भी कुछ प्रसाद करो, किसी को बुलाओ, तुम भी तैयार करो आत्माओं को। तो उस दिन मैं निकल पड़ी आत्माओं को निकालने के लिए, और उसी दिन निकली आपका संदेश आ गया, मैं यहाँ चली आई। और बाबा मैंने सोचा कि मेरे घर में कलह है, मैं शर्म करती हूँ, कहाँ जाऊँ, पहले मैं अपने घर को सुधारूँ। तो अंदर से आत्मा बोली कि तेरे घर में एक महीने से तो शांति है, तू निकल। मैंने हिम्मत जुटाया आपके भक्त के द्वारा, हिम्मत मिली मुझे, प्रेरणा मिली, मैं निकल के गई और बुला के आई, आपका संदेश आया, मैं इधर आ गई। और जब मैं आपसे मिलने आने लगी, उसी तरह का आतंक भूकंप मेरे घर में फौरन आ गया, तो क्या करूं मैं, उसको डर के यही रोक दूं पुरसाद।
तुम्हें कैसे मालूम कि वो ही आत्मा है कि दूसरी है?
वो आत्मा ने नहीं मचाया, ये आपके भक्त ने मचा डालो पत्र।
तो फिर
कैसे करूं, इसको प्रसाद को बढ़ाऊं आगे कि यहीं रोक लगा दूं? आगे मेरी हंसी तो न होगी, बदनामी तो न होगी।
ये तो विघ्न है, तुमने विघ्न पैदा किया है पूर्व जन्म में, तुमने ही विघ्न को आमंत्रण दिया है,
ये मेरा
तो सामना कौन करेगा?
तो आज ये हिसाब किताब मेरा चुपता होगा, घबरा के न बैठू।
फिर
युगल को जो आके हम कुछ जबरदस्ती से ले गए वहाँ।
कहाँ जबरदस्ती से ले गए?
जी मुगल खराब है वो सेंटर।
हाँ,
तो उनका कहना था कि तुम जबरदस्ती से, उसका कोई लेट से
क्यों नहीं लगेगा, जबरदस्ती क्यों करती है?
तो हम तो क्यों,
जब सहज राजयोग है, तुम सहज राजयोग खुद सीख रही हो, तो उनके ऊपर जबरदस्ती क्यों कर रही
है?
विघन नहीं पड़ेगा,
नहीं पड़ेगा।
तो तुमने क्यों सोचा, ये तो मनमत हुई, श्रीमत तो नहीं हुई। अरे आवाज नहीं करो।
हाँ,
संगम में क्या चलता रहता
है? संगम में ठंडे ठंडे पैर पड़ना या सब कुछ करना, तो यदि सीता जी मर्यादा पुरुषोत्तम थी तो अपने हर मामले झुक के चलती थी, हर बार जैसे करती थी। तो कहते नहीं अब ये फाउंडेशन नहीं, ये पैर पड़ाई है, ये सब बेकार है, ना तो ये देवी देवतन की निशानी है। तो कहते कि ये जो संगम है फाउंडेशन डालेंगे वही तो फिर चलता रहता है।
तो
अभी से जैसे बिल्कुल कुछ नहीं करे तो फिर वो फाउंडेशन कैसे पड़ा रहेगा? जो करेगा
भक्ति आती है रावण से और ज्ञान आता है राम से, भगवान से। तो रावण का फाउंडेशन डालना जरूरी है।
तो ये रावण
का
फाउंडेशन
है और क्या?
बाबा लौकिक में
भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होना है या नहीं होना है? भक्ति चलती रहेगी या खत्म होने वाली है?
नहीं तो ये तो कहते हैं कि फाउंडेशन जैसा अभी हर चीज का जैसे कहते हैं गुस्सा हो गया तो
अच्छी चीज का फाउंडेशन डालना चाहिए, एक की याद का, एक को समझने का, एक के पीछे पढ़ने का फाउंडेशन डालना चाहिए या दसियों बीसियों के पीछे चलने का फाउंडेशन डालना चाहिए? भक्ति माने बीसियों के पीछे पढ़ना, दसियों के पीछे पढ़ना, दसियों को याद करना, दसियों की पूजा करना, दसियों की चिरौरी करना, और ज्ञान माने एक को मानना, एक के पीछे पढ़ना। तो क्या अच्छा लगता है तुमको?
है जो देवी देवताओं का फाउंडेशन है वही डालना।
देवी देवताओं का फाउंडेशन
जैसे देवी देवता मर्यादा पुरुषोत्तम थे अच्छी तरह से।
अरे तुमको एक के पीछे पढ़ना है कि अनेकों के पीछे पढ़ना है? एक के पीछे पढ़ना है। तो अच्छा काम हुआ या बुरा काम हुआ बोलो?
बाबा संग तोड़ दिखाने के लिए तो पैर छूने पड़ते ना, उनके कहने का ही आसर है।
चार नावे हैं, एक में एक हाथ रखा, दूसरी में दूसरा हाथ रखा, एक में पांव रखा, दूसरी में दूसरा पांव रखा। चार नावे हैं ना, चारों में चारों हाथ पांव रख दिए। अब अगर एक पांव या एक हाथ का वजन एक नाव में पकड़ के नहीं रखेंगे क्या, और चारों में बराबर बराबर रखेंगे तो हाल क्या होगा? तो तोड़ निभाने का मतलब ये नहीं है कि बराबर बराबर कर दो। बुद्धि का पांव, बुद्धि रूपी हाथ जो है वो एक बाप की तरफ रहे और बाकी सिर्फ चलाने के लिए साथ ले जाना है। इनका भी कल्याण करना है, सीप साफ करते रहो और लिपा पोती करते रहो।
राम ही रावण बनता है क्यों?
हाँ, तो खुशी की बात है ना, डांस करो। हाँ बोलो, क्या कह रहे?
क्यों बनते?
अच्छा, ऐसी कौन सी आत्मा है दुनिया की जो सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनती? ऐसी दुनिया की कोई आत्मा है जो सतो प्रधान बनती है फिर कलयुग के अंत में आके तमो प्रधान नहीं बनती है? दुनिया की कोई चीज ऐसी है? एक शिव ज्योति बिंदु को छोड़ करके दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी आत्मा, कोई भी चैतन्य, कोई जड़, कोई जंगम ऐसा है जो तमो प्रधान न बनता हो? है? तो क्या राम ने क्या बुरा किया? है? कृष्ण कंस बनता है, राम रावण बनता है, ये बुरा क्या हुआ? विष को विष से काटा जाता है, लोहे को लोहे से काटा जाता है। स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? ये मुरली में क्यों बोला? नरक की दुनिया के ऊपर भी वर्चस्व तब कायम रहेगा जब वो ऐसी स्टेज धारण करे कि नारकीय दुनिया वालों से मुकाबला कर सके। लोहा लोहे को कब काटता है? एक लोहा ज्यादा मजबूत और दूसरा लोहा कमजोर होता है, कोमल होता है। तो राम वाली आत्मा हो चाहे कृष्ण वाली आत्मा हो, दोनों पावरफुल आत्मा है। सतो प्रधान बनती हैं तो सबसे ज्यादा सतो प्रधान बनती हैं अपने युग में, और तमो प्रधान बनती हैं तो सबसे ज्यादा तमो प्रधान बनती है, नहीं तो ये दुनिया खलास होने वाली नहीं है। तुम बच्चे तो नंबरवार तमो प्रधान बनते हो, लेकिन मुरली में बोलते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, तो कैसे कटेगी ये दुनिया? है? अरे सबके अंदर इतनी ताकत है जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को 100% की स्टेज पे पहुंचा दें। फिर कोई आत्माओं का पार्ट ऐसा नुदा हुआ है कि सारी आत्माएं ऊपर से जब नीचे उतर आती है तो अंत में उनको इतना तमो प्रधान बनना पड़ता है। बनना जरूरी है, लाजमी है, ताकि दूसरों में प्रवेश करके वो सारी दुनिया का संहार कर दे। इसलिए गीता में लिखा हुआ है जो आत्मनिष्ठ है वो सारे संसार की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता।
मैं अपने घर में मैं या कीड़ी चलती हूँ, युगल नहीं चलते हैं, मतलब ज्ञान है उन्हें कि इतना तीखे नहीं है, और अपनी पार्टी करने के लिए कहती हूँ उसे, वो आज तो कुछ नहीं उसमें पार्टी करने के लिए कहती है, तो कहते हैं मैं सुबह सुबह नहीं खाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, और सब कुछ पैसे से और सब जो कुछ खून पसीना करके पैसा लाते हैं तो मुझको देते हैं, सहयोग भी देते हैं, लेकिन भर्ती करने के लिए तैयार नहीं होते।
तो आपको परेशानी क्या हो रही है? आपको क्या तकलीफ हो रही है? आप हाथ धोके उनके पीछे क्यों पड़े? आपको तो बाबा से वरदान मिल चुका है कि आपका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, और क्या चाहते हैं आप?
आगे
चल, तो हिसाब किताब कौन पूरा करेगा?
बाबा ज्ञान मिलने से पहले जब भक्ति में चलते थे तो लोग मनन मानते हैं कि हमारी ये कामनाएं पूरी हो जाए तो हम ये करेंगे, अचानक ज्ञान मिल जाता है तो क्या उसको करना चाहिए?
जो लौकिक दुनिया में मन्नतें मांगी थी वो भगवान से मांगी थी या भूत प्रेतों से मांगी थी? हैं? भगवान से, भगवान मिला था, होता है उस समय भगवान
जिसको जानते उसी को भगवान समझते।
तो अब भी वैसा ही कर लो।
ज्यादातर अभी युगल है जितने गीता पाठशाला में हो चाहे बाहर में हो, गीता पाठशाला की युगल हो चाहे बाहर के युगल हो चाहे कोई भी हो, तो इस समय ऐसा प्रभाव चला हुआ है कि इतनी टक्कर क्यों होती है? युगलों में
टक्कर इसलिए होती है, टक्कर इसलिए होती है,
उछाल तीन बार तक क्या कर रही है, इतना इतनी टक्कर की जरूरत हर गीता
पर। अब रुको भी, टक्कर इसलिए होती है इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के जो बीज हैं जगत पिता और जगदम्बा, जब तक उनके ही संस्कार मिलकर के एक नहीं होंगे तो दुनिया में कौन सा युगल होगा जिसके संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे?
कैसे लड़ते रहेंगे?
हाँ
लड़ते रहेंगे सारे युगल,
बिल्कुल लड़ते रहेंगे,
उसके बाद चलती नहीं, लड़ते रहेंगे सारे।
हाँ लड़ते रहेंगे,
संस्कार की टक्कर होती रहती
है, होती रहेगी, होती रहेगी, आपकी नहीं होती है।
हमारे कब तक होती रहेगी?
तब तक होती रहेगी जब तक पहला मणके जो पहले युगल मणके हैं वो संपन्न न बने।
मतलब पवित्रता
का
पवित्रता
का देदान तो छूटे ग्रहण। जब ग्रहण लगता है चाहे सूरज ग्रहण हो और चाहे चंद्र ग्रहण हो, तो जो बंगी लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं? देदान तो छूटे ग्रहण। क्या जड़ सूर्य और जड़ चंद्रमा को दान देना है? हैं? उनकी बात थोड़े ही है, ये तो चैतन्य की बात है।
बाबा
जिससे लिया है उसको देना भी पड़ेगा।
बाबा हाँ पत्रा खुलवाओ लला तो बाबा लोग कहे ललो
लला लला बाबा
लोग
इनके कान में कह दो, बाजू वालों के कान में ये समझा दे।
बोलो बोलो
बोलो
बोलो लो सब साथी घेरा था तो सब साथी के माने का हो
आते हैं तो उसमें जो है बाबा लोग बता रहे तुमको साढ़े साथी लगी हुई है।
हाँ। साढ़े साथी लगी
साढ़े साथी हाँ। तो इसका क्या मतलब पूछ रही, क्या साढ़े साथी होता है?
हाँ। ना जो नौ ग्रह होते हैं उन ग्रहों में से कोई न कोई की दशा बैठती है, कोई के ऊपर कहते तुम्हारे ऊपर शनिचर की दशा है, कोई को कहते हैं तुम्हारे ऊपर राहु की दशा है, कोई को कहते हैं तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, क्या सदगुरु की दशा है। तो इस समय नौ चैतन्य आत्माएं हैं दुनिया की सबसे श्रेष्ठ, वो नौ चैतन्य आत्माएं जो हैं उनके आधार पर जो चलते हैं तो उनकी परछाया के नीचे आ जाते हैं। क्या
वो
जिसके डायरेक्शन पर चलते हैं जैसे उनकी छत्र छाया के नीचे आ जाते हैं, तो कोई सदगुरु की सत्य छाया में चलते हैं तो उनके ऊपर सदगुरु की दशा है, सदगुरुवार की दशा, कोई फिर नौवा है राहु सबसे निम्न कोटि का उसके अंडर में चलते हैं तो राहु की दशा आ जाती, नंबर वार है। तो ऊंचते ऊंच को पकड़ना चाहिए या नीचे को पकड़ना चाहिए? उसको पकड़ना चाहिए
तो क्या चिंता कर रही
है?
नहीं तो हम ऊंचे को पकड़ा
बाबा
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 बाबा जैसे माताएं कभी इकट्ठी नहीं की है तो वो बाबा को लेटर दे सकती
है? क्यों नहीं दे सकती? कोर्स ले लिया है? हैं? कोर्स से फोर्स आया है? फोर्स लेने के बाद फोर्स आना चाहिए।
बाबा जी बाबा को ज्ञान सिखाना उन्हें मुरली नहीं दिखा सकते
हैं?
फिर में जो मुरली आती हैं
हमें ज्ञान नहीं, मतलब हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं कि हम उन्हें ज्ञान दे सके, हम टीवी के द्वारा नहीं उनको आत्मा दे सकते।
तो जनरल कैसेट सुनाओ नई आत्मा को। कुछ कैसेटे ऐसी हैं जो जनरल पब्लिक को भी सुना सकते हैं, ब्रह्मा कुमारों को भी सुना सकते हैं, और जो एडवांस में चल रहे हैं उनको भी सुना सकते हैं।
एकदम नई आत्मा मान लो घर पे आती है ना,
हाँ, तो उनको जनरल कैसेट सुना,
जनरल कैसेट सुना।
भाई रिसेंटली मुक्ति
है,
रिसेंटली
मुक्ति। रिसेंटली क्या?
रिसेंटली,
जल्दी जल्दी तुरंत चलाई गई। जो कल मुरली चलाई गई उसको कहेंगे रिसेंट।
बाबा जो दीदी ने मतलब ज्ञान बताया हमको और हम उस ज्ञान में चले तो वो हमारे निमित्त बनी, जो उनने मतलब जो आधार बताया उसी आधार पर चलते रहे तो मतलब सही रहेगा।
उन्होंने जो आधार बताया, जो रास्ता बताया, वो भगवान का रास्ता दिखाया या अपने पीछे चलने का रास्ता बताया?
भगवान का बताया।
तो भगवान को पकड़ा नहीं पाया?
पकड़ लिया
तो फिर दीदी के पीछे क्यों पड़ी?
बाबा हमार बेला जब समय हम करते हैं सुबह टाइम तो हमार बेला के समय में नींद और झुटका क्यों आ जाता है? और अचानक हमारे महीने से जो है कलियम बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है,
कोई कमर तोड़ रहा है,
ये पता नहीं चल रहा कि हमारे पूज्य जनों का जो हिसाब किताब है या जो है वो समय समझ में नहीं आ रहा।
जब शुरुआत में आए थे तब क्या हाल था?
ये नहीं था
तब, अच्छा तब ऐसा नहीं था,
एक महीने से जो है
नहीं, जब शुरुआत में ज्ञान में आए थे तब ऐसा नहीं था ना?
नहीं था
क्योंकि तब सत्व प्रधान स्टेज थी। फिर दूसरों की बातें सुन करके उल्टा पुरुषार्थ करना शुरू किया, उल्टे कर्म किए, बस सौगुना बोझा चढ़ने लगा। सौगुना बोझा चढ़ता है तो आदमी थकेगा या अथक रहेगा? थकेगा।
बाबा अज्ञान काल में कलकत्ता के ऊपर झगड़ा होता है तो कोई बात नहीं, और ज्ञान में आने के बाद अगर युगों दोनों भट्टी कर ले और अगर कलकत्ता के फिर झगड़ा हो तो ये क्या है?
तो युगलों में से जो पुरुष है वो क्या दुर्योधन दुशासन नहीं रहता है ज्ञान लेने के बाद?
तो माता युगल को भाग जाऊंगी मैं, चली जाऊंगी मैं, निकल जाऊंगी।
हाँ, तो कौन मना करता है? डाइवोर्स ले और चली जाओ, कोई मना करेगा क्या?
पुरुष मान जाएगा, घड़ी मानते हैं, घड़ी
कोई ऐसी भी होती है जो मनवा लेती है, जैसे पुष्पा माता को पति ने मना किया, नहीं जाने देता था, बिगड़ डालता था, परेशान करता था, कोर्ट में चढ़ गई, कोर्ट में चढ़ करके उससे लिखवा लिया मैं ज्ञान में चलने के लिए मना नहीं करूंगा, कहीं भी सत्संग में जाओगी 4-6-8 दिन के लिए मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, सारी बातें लिखवा ली कोर्ट में लिखवा ली। हाँ जी,
ऐसे सिंपल पेपर में तो काम नहीं चलेगा।
हाँ,
सिंपल पेपर में अगर घर में लिखवाते हैं
तो कोई नहीं मानता। कोर्ट में लिखवा लिया, दोबारा ऐसी गलती करे और प्रूफ सहित बता दे तो फिर जेल भी हो जाए।
और कई युगलों का ये भी हाल है कि वो मतलब करते भी है, समझते भी है, और ना करना चाहिए भी समझते हैं, बाद में पश्चाताप भी करते हैं।
है?
कोई भी चीज में मनसा में या संकल्पों में बट कर्मेंद्रियों से नहीं।
है?
तो भी उनका क्या आगे कैसे क्या प्रायश्चित हो या माफीनामा हो या चलता ही रहेगा?
माफीनामा काहे के लिए, वो तो पोता मिल की बात है, पोता मिल लिख के देना और क्या करना।
बाबा हमने दर दर की ठोकरें खाई, अब जब से हमने बाबा का ज्ञान सुना तो हमारे बोल तो बहुत हुआ लेकिन भीतर से ऐसा दिल कमजोर हो गया है कि हम जो सोचते हैं तो हमको याद भूल जाती है, बस वही बाबा कहते हैं बस, और तुरंत भूल जाता है, जो सुनते हैं सुन लेते हैं अच्छा लगता है फिर भूल जाता है कि कुछ हम और कहें, बस यही बाबा मेरा बस इतना ही कह आता है।
कह रही है अपने घर बुला रही है, अपने घर बुला रही है।
तुम आत्मा हो कि शरीर? तुम कौन हो?
शरीर।
तुम शरीर हो, आत्मा नहीं हो। तुम आत्मा नहीं हो, आत्मा हो। आत्मा हो तो तुम्हारी आत्मा का घर कहाँ?
बड़ी
आत्मा का घर पढ़ रहा हूँ ना मैं,
तुम्हारे शरीर का घर पढ़ रहा
हूँ। ठीक है, आ गया।
ये माता जी ये करना
हां
ये भगवा भगवा भगवा।